मैत्रेयः सह दुरुक्ते विद्धः श्वसन् रुषा दण्डहतः यथा अहिः हित्वा मिषन्तम् पितरम् सन्नवाचम् जगाम् मातुः प्ररुदन् सकाशम्। मैत्रेय उवाच मातुः सपत्न्याः सदुरोक्तिविद्धिः विद्ध मातुः सपत्न्याः सदुरोक्तिविद्धः श्वसन् रुषादण्डहतो यथा हिह हित्वा मिषन्तम् पितरम् सन्नवाचम् जगाम मातुः प्ररुदन् सकाशम्। यह उवाच मैत्रेय मुनि ने कहा मातुः अपनी माता की सपत्न्याः सौत का सह वह दुरुक्ति कटु वचनों से विद्धः विंध कर श्वसन तेजी से सांस लेता रुषा रोष से दंड हतः हंडे से मारा गया। कृपा कीजिए डंडे से मारा गया। यथा जिस प्रकार अहिह सर्प हित्वा त्याग कर मिषन्तम् केवल ऊपर देखता पितरम् अपना पिता सन्नवाचम् मौन जगाम चला गया। मातुः अपनी माता के प्ररुदन रोते हुए सकाशम पास। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। मैत्रेय मुनि ने कहा हे विदुर, जिस प्रकार से लाठी से मारा गया सर्प फुफकारता है उसी प्रकार ध्रुव महाराज अपनी विमाता के कटु वचनों से आहत होकर क्रोध से तेजी से सांस लेने लगे। जब उन्होंने देखा कि पिता मौन हैं, तो उन्होंने प्रतिवाद नहीं किया। वे तुरंत उस स्थान को छोड़कर अपनी माता के पास गए। इस श्लोक में और अगले श्लोक में भी तात्पर्य नहीं है, तो श्लोक केवल पढ़ेंगे। श्वसन्तम् स्फुरिताधरोष्टम् सुनेति रुत्संग उधर्य बालम् निशम्य तत्पौरम् मुखानितान्तम् सा विव्यथे यद्गतिम् सपल्या सपत्न्या। अनुवाद। जब ध्रुव महाराज अपनी माता के पास आए तो उनके होंठ क्रोध से हिल रहे थे और वे सिसक सिसक कर रो रहे थे। सुनीति ने उन्हें तुरंत गोद में उठा लिया और अंतःपुर के वासियों ने सुरुचि के जो कटु वचन सुने थे उन सब को विस्तार से कह सुनाया। इस तरह सुनीति अत्यधिक दुखी हुई। सोत्सृज्य धैर्यम विललाप शोक दावा विज्ञा दावलतेव बाला वाक्यम सपत्न्यः स्मरति सरोज श्रिया दृशा बाष्प कला मुवाह। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। वह घटना सुनीति के लिए असह्य थी। वह मानो दावाग्नि में जल रही हो और शोक के कारण वह जली हुई पत्ती के समान हो गई और पश्चाताप करने लगी। अपनी सौत के शब्द स्मरण होने से उसका कमल जैसा मुख आंसुओं से भर गया और वह इस प्रकार बोली। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जब मनुष्य दुखी होता है तो वह अपने को जंगल की अग्नि से जले पत्ते के समान अनुभव करता है। यद्यपि सुनीति का मुख कमल के समान सुंदर था, किंतु अपनी सौत के कटु वचनों से उत्पन्न अग्नि से वह सूख गया। यहां पर हम देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज ने जब अपने विमाता सुरुचि के कटु वचन सुने तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि वैसे भी वो एक बालक थे और इसके अलावा क्षत्रिय भी थे, तो किसी से भी कटु वचन बोले जाते हैं तो उसे दुख हो जाता है। लेकिन विशेष करके जब एक बालक को कटु वचन बोले जाते हैं और भी ज्यादा वो दुखी हो जाता है। और इसके ऊपर ध्रुव महाराज क्षत्रिय थे, इसलिए अपमान सहन करने नहीं कर सके। क्षत्रिय के लिए अपमान मृत्यु से भी बुरी चीज होती है। क्षत्रिय मृत्यु का सामना कर सकता है निडर होकर, लेकिन अपमान को सहन नहीं कर सकता। इसलिए ध्रुव महाराज जिनके खून में जिनका खून क्षत्रिय खून था, उस अपमान को सहन नहीं कर सके और इसलिए क्रोध से उनके जो होठ हिलने लगे और सिसक सिसक कर वो रो रहे थे। और जब उन्होंने देखा कि अपने पिताजी को बोल नहीं रहे हैं, उन्होंने भी कुछ कहा नहीं और चुपचाप वहां से चले गए। अपने माता सुनीति के पास में गए और जब ऐसे सिसकते सिसकते रो रहे थे तो माता सुनीति ने पूछा कि क्या बात है। उस समय जो वहां पर उपस्थित महल के निवासी थे, जिन्होंने ये घटना देखी हुई थी, उन्होंने माता सुनीति को सब समझाया। उस समय माता सुनीति को भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि माता पिता को बहुत बुरा लगता है जब बच्चों के साथ में कोई बुरा व्यवहार करता है, तो अपने साथ में करता है तो उनको उतना कोई बुरा नहीं लगता, लेकिन अपने बच्चों के साथ में जब ऐसे बुरा व्यवहार होता है तो माता पिता को भी सहन नहीं होता है। इसलिए हम देखते हैं कि कई बार पड़ोसियों के बीच में झगड़े इसलिए होते हैं कि बच्चों के बीच में झगड़े हो जाते हैं तो माता पिता के बीच में झगड़े हो जाते हैं। आपस में झगड़े करते हैं वो कभी कभी कम करते हैं, तुमने मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे के साथ में ऐसा क्यों किया। तो हमने देखा है कई बार झगड़े इस बात पर हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ में कुछ बुरा व्यवहार हो तो माता पिता को सहन नहीं होता, तो ये नेचुरल है, स्वाभाविक है। उसी प्रकार से कृष्ण भगवान भी उनकी धारणा उनकी मनोवृत्ति भी ऐसे ही है। उनका कोई अपमान करे तो वह सहन कर सकते हैं, लेकिन उनके भक्तों का कोई अपमान करे तो सहन नहीं कर सकते, तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। जिस प्रकार से भगवान क्रोधित हो गए थे जब अम्बरीश महाराज का अपमान किया था, किन्होंने किया था, दुर्वासा मुनि ने, तो भगवान नारायण ने दुर्वासा मुनि से कहा जब दुर्वासा मुनि उनके आश्रय उनका आश्रय लेने आए, सुदर्शन चक्र से बचने हेतु आए, तो नारायण भगवान ने क्या कहा? मैं भी नहीं बचा सकता, मैं मेरे भक्त के अधीन हूं, मेरे भक्त का कोई अपमान करता है तो मुझसे सहन नहीं होता है, और इसलिए आप अम्बरीश महाराज से ही क्षमा याचना करो। अगर अम्बरीश महाराज आपको क्षमा कर देंगे तब सुदर्शन चक्र खुद ब खुद वहां से हट जाएगा, वरना मैं क्षमा नहीं कर सकता तुम्हें, मेरे में ये शक्ति नहीं है अभी, अब मेरे बस के बाहर हो गई ये बात। ठीक उसी प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि जगाई और मधाई ने हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु के ऊपर आक्रमण किया, और यहां तक कि मधाई ने जो मटका है, मिट्टी का मटका, वो भी जिसमें शराब पीता था, पी रहा था वो, उसने नित्यानंद प्रभु के सर पे मार दिया है, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने सुदर्शन को पुकारा। सुदर्शन चक्र को हाथ में धारण किए हुए चिल्लाते हुए वो मधाई की ओर बढ़े आगे, और ऐन वक्त पर नित्यानंद प्रभु ने उनके पैर पकड़ लिए और उनसे प्रार्थना की कि आपको ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि जगह मधाई जैसे पापी लोग तो कलयुग में भरे हुए हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर कलयुग के सारे निवासियों को आपको खत्म करना होगा, इसलिए आप इनकी इनको क्षमा कर दीजिए, इनको भक्ति मार्ग में लाइए, यही आपकी कृपा है, यही आपका आंदोलन है, वास्तव में यही आपका यहाँ अवतार लेने का उद्देश्य है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इतने क्रोधित हुए थे कि वो मारने ही वाले थे, केवल अपने भक्त ने जब क्षमा की तब उन्होंने सुन लिया और ठंडे हो गए। तो उसी प्रकार से जब ध्रुव महाराज का अपमान हुआ तो माता सुनीति को बहुत बुरा लगा, और यहाँ पे बताया जाता है कि जैसे एक फूल मुरझा जाता है ज्यादा धूप में रखने से, तो उसी प्रकार से सुनीति, माता सुनीति का चेहरा भी ऐसे ही मुरझा गया। वैसे तो उनका चेहरा पुष्प के बराबर था, लेकिन जब कोई दुखी हो गई तो फिर उनका चेहरा बदल गया। बताया जाता है, अंग्रेजी में कहावत है कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, मतलब चेहरे को देखकर आप पता कर सकते हैं कि मन में क्या है। अगर किसी के मन में बहुत दुख है तो चेहरा भी चेहरे से प्रतीत होता है कि बहुत दुखी है, और अगर वो व्यक्ति बहुत खुश है तो उसके चेहरे से पता चल सकता है कि वो बहुत खुश है, उसके मन में बहुत सुख है, आनंद है। तो जिस प्रकार से फूल जब बाहर हम देखते हैं कड़ी धूप में रहता है तो मुरझा जाता है, सूख जाता है, उसी प्रकार से लोगों के चेहरे दुख के समय मुरझा जाते हैं और सुख के समय बिल्कुल खिल उठते हैं। इसलिए फूल के जो तुलना की गई है, ये दृष्टांत है, ये बहुत ही सही दृष्टांत है, और वास्तव में जब भक्ति में आते हैं तो भक्ति में आकर हमें इतने आनंद का अनुभव होता है, या कम से कम होना चाहिए, जिससे सभी भक्तों को प्रफुल्लित ऐसे फूल के समान, खिले हुए फूल के समान लगना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, हरे कृष्ण जप करो और सदा दुखी रहो, नहीं सॉरी सुखी रहो। देख रहे थे कौन कौन सो रहे हैं, कौन नहीं सो रहे। हरे कृष्ण जपो और सदा सुखी रहो, क्योंकि हरे कृष्ण जप करने से खुद ब खुद आनंद से आनंद होने लगता है। आनंद जब होता है तो चेहरे पे भी आनंद दिखाई पड़ता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, जब भगवत भक्ति में हम युक्त हो जाते हैं तो क्या होता है, एवं प्रसन्न मनसो, मन प्रसन्न हो जाता है और चेहरे में भी ये प्रसन्नता दिखाई पड़ती है। इसलिए प्रभुपाद बताते थे कि देखो मेरे ये जो शिष्य हैं, पहले सारे इनकी बुरी आदतें हुआ करती थी, शराब पीते थे, नाना प्रकार के ड्रग्स लेते थे और मांस खाते थे और स्वच्छ भी नहीं थे, सारे प्रकार की बुरी आदतें इनकी थीं। लेकिन अभी
ये लोग हरे कृष्ण जाप कर रहे हैं, इन्होंने सर मुंडवा लिया है, या जो महिला है उन्होंने अच्छे कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं और वो भी जाप कर रहे हैं, बुरी आदतें छूट गई, इसलिए इनके चेहरे पर तेज देखो अब कितने सुंदर लग रहे हैं ये। और जो भी उनके शिष्यों को मिलने आते थे, जो उनके रिश्तेदार वगैरह थे, उनके माता पिता, उनके दोस्त, ये कहते थे कि अरे इनका चेहरा कितना बदल गया। उसी प्रकार से भक्ति में आने के बाद भी हमारे भक्तों के बारे में लोग कहते हैं कि देखो कितना तेजस्वी लग रहा है, कितना तेज है चेहरे में, कितने खुश लग रहे हैं ये भक्ति में आने के बाद में, क्योंकि भक्ति में जो आनंद मिल रहा है वो चेहरे में प्रकट हो जाता है। अंदर का आनंद जो है वो चेहरे में आने की वजह से तेज आ जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति वास्तव में सुखी है वो एक खिलते हुए फूल की तरह नजर आएगा। इसलिए प्रभुपाद बताते थे कि मेरे पास इतने सुंदर सुंदर पुष्प हैं जो खिले हुए हैं, लेकिन जब हम हरे कृष्ण जप नहीं करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं, पाप करते हैं, तो ऐसे हो जाता है कि जैसे एक फूल खिलता वो फूल कड़े धूप में चले जाए, क्या होता है, मुरझा जाता है, सूख जाता है। तो संसार के लोग ऐसे सूखे वो फूल की तरह दिखते हैं। आप बाहर को ही जाकर देखिए लोगों के चेहरे, कितने ऐसे चेहरे करके बैठते कि मानो क्या हो गया उन, क्योंकि अंदर से दुखी हैं, विचलित हैं, चिंतित हैं। सदा समुद्विग्न धियाद असत ग्रहात, प्रहलाद महाराज बताते हैं ऐसे लोगों के पास में कि असत ग्रहात, असत ग्रहण करने की वजह से, झूठ के संसार में रहने की वजह से सदा समुद्विग्न धियाद, हमेशा चिंतित रहते हैं कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अरे रे कल क्या हो गया था, परसों क्या हुआ, आज क्या हो रहा है, हमेशा चिंतित रहते हैं, उसका क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे पैसे का क्या होगा, घर का क्या होगा, मेरे व्यवसाय का क्या होगा, मेरे नाम इज्जत का क्या होगा। तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति चिंतित है बहुत एक चीजों के बारे में, और चिंता जब है तो बाहर चेहरे पे भी प्रकट होती है। और प्रभुपाद जी जब इतने सारे कष्टों में थे, कृष्ण के लिए इतना सारा कष्ट उठा रहे थे, फिर भी उनके चेहरे पे वो उजाला था, एक तेज था, क्यों, क्योंकि ये सब कृष्ण के लिए कर रहे थे। तो जो चिंता हम भगवान के मार्ग में, भगवान की सेवा में जो अनुभव करते हैं, उस चिंता में और संसारी चिंता में बहुत अंतर होता है। अंतर ये होता है कि भगवान की सेवा में चिंता करने से हमारा शुद्धिकरण होता है, भक्ति में हम प्रगति करने लगते हैं, और वास्तव में भगवान इससे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन संसारी चीजों से के बारे में चिंता करने से आध्यात्मिक प्रगति कोई नहीं होती, भगवान प्रसन्न नहीं होते, और नहीं मन शांत हो जाता है, आगे चल के केवल चेहरा मुरझा जाता है, दिन रात हाय हाय करते रहते हैं। लेकिन भगवान के बारे में जब जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, उनका कार्य संभालने लगते हैं, उनकी सेवा में आगे हम बढ़ने लगते हैं, तो चिंता भले क्यों ना आए, लेकिन ये चिंता आध्यात्मिक है। ऐसी चिंता एक अग्नि के बराबर है, जिस अग्नि में हमारे सारे भौतिक कलमश, हमारे सारे बुरी आदतों की जो प्रवृत्तियां हैं, वो सब जल के राख हो जाती हैं। ऐसे चिंता, यही चिंता है। इसलिए भगवान ज्यादातर अपने भक्तों को कष्ट में डालते हैं, चिंता में डालते ही हैं। क्यों, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसे चिंता से ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, उनकी बुरी आदतें या प्रवृत्तियां खत्म हो जाएंगी। वैसे आचार्य समझाते हैं कि गोपियों को भी इतना दुख क्यों हुआ, ब्रजवासी थे, इनको इतना विरह का दुख क्यों अनुभव करना पड़ा, क्योंकि इसके पीछे एक बात है। वास्तव में जब हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते रहते हैं और हम शुद्ध भक्त बन जाते हैं, तो शुद्ध भक्त बनने के बाद भी ऐसा नहीं कि 100% हम शुद्ध हो जाते हैं। हो सकता है कि हृदय के किसी भी कोने में छोटे छोटे कण रह जाते हैं भौतिक कलमश के, भौतिक मल कण मात्र इधर उधर कोने में रह जाता है, जैसे आप जब घर साफ करते हैं, कमरा साफ करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, तो साफ करने जितना भी आप साफ करें, हो सकता है कि कोने में कुछ इधर उधर कुछ रह गया हो। वैसे देख सब कुछ शुद्ध है, अच्छा है, साफ है, लेकिन इधर उधर कण मात्र कुछ रह जाता है। ठीक उसी प्रकार से भक्ति करने से हृदय प्राय साफ हो जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा कुछ रह सकता है। हम सुबह को एक श्लोक बोलते हैं भागवत क्लास शुरू करने के पहले, कौन सा श्लोक है वो? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवते सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। पहला लाइन क्या है इसमें? नष्ट अभद्रेषु, लेकिन बीच में नष्ट चीजें जो है, जो अभद्र चीजें हैं वो नष्ट हो जाते हैं। बीच वाला शब्द क्या है? प्रायेषु। प्रायेषु मतलब प्राय, मतलब क्या? प्राय खत्म हो जाती है, मतलब क्या? ऑलमोस्ट मतलब समझ लीजिए कि हो गए लेकिन थोड़ा कुछ बाकी है, करीब करीब खत्म हो चुका। करीब करीब मतलब खत्म होने को आया लेकिन कुछ कुछ रह गया है। प्राय शब्द, अगर ऐसा नहीं होता तो यहां प्राय शब्द का प्रयोग नहीं किया हुआ, तो सुखदेव गोस्वामी ने और कुछ कह दिया होता, संपूर्ण शब्द का प्रयोग कर दिया होता, उन्हें प्राय कह दिया। तो नैष्ठिक की भक्ति में भी प्राय पाप नाप नष्ट हो जाते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा कुछ रह जाता है, क्योंकि इतने करोड़ों करोड़ों जन्मों का मल इकट्ठा हो चुका है। तो इसीलिए ऐसे अवस्था में जब शुद्ध भक्त हो जाते हैं तो भगवान उनको सीधे भगवान के धाम में नहीं ले जाते हैं। वो क्या, कहां ले जाते हैं उनको, पता है किसी को? प्रभुपाद जी ने कृष्ण बुक में भी समझाते हैं। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण जब भौतिक संसार में लीला करने आते हैं ना, तो कैसे लीला करते हैं? एक ब्रह्मांड में आते हैं, एक ब्रह्मांड में आकर यहां पर लीला करते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व यहां वृंदावन में आके करके चले गए, और यहां की लीलाएं जब समाप्त हो जाते हैं तो कहां जाते हैं? दूसरे ब्रह्मांड में जाते हैं, भौतिक संसार के, वहां पर लीला करते हैं, और फिर वो ब्रह्मांड को छोड़कर तीसरे ब्रह्मांड में जाते हैं, और ऐसे कितने सारे ब्रह्मांड हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। तो ऐसे भगवान का नॉन स्टॉप टूरिंग रहता है भौतिक संसार में, और घूमते रहते हैं भगवान इस भौतिक संसार में, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड, यहां लीला समाप्त हुई तो वहां शुरू हुई। जैसे सूर्योदय एक जगह हुआ तो दूसरे क्षण में दूसरी जगह सूर्योदय नजर आता है, वहां सूर्य थोड़ा ऊपर आ गया कि तीसरे जगह में सूर्योदय आ गया, है ना? इस तरह से देखा जाए तो पृथ्वी लोक के हर एक इलाके में कहीं ना कहीं एक जगह तो सूर्योदय हो रहा है। अभी यहां सूर्योदय को हो गया लेकिन कहीं और सूर्योदय हो रहा है, और थोड़ी देर बाद में वहां भी सूर्योदय खत्म हो जाएगा लेकिन और कहीं सूर्योदय हो रहा होगा। सही बात है ना? तो उसी प्रकार कृष्ण की लीला है। कृष्ण की लीला एक ब्रह्मांड में कृष्ण लीला का उदय होता है, फिर वहां लीला अस्त होकर दूसरे ब्रह्मांड में उसका उदय होता है, फिर अस्त होकर तीसरे ब्रह्मांड में। इस प्रकार से एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड, दूसरे से तीसरे, इस प्रकार से अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भगवान श्री कृष्ण भ्रमण करते रहते हैं, करते रहते हैं, और अलग अलग लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। तो जब कोई भक्त नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवान की सेवा करके करके शुद्ध हो जाता है, प्राय शुद्ध हो जाता है, 99% शुद्ध हो जाता है, 99.99% शुद्ध हो जाता है, तो भगवान क्या करते हैं? उस जीव को, उस भक्त को एक ऐसे ब्रह्मांड में ले जाते हैं, एक ऐसे जगह में ले जाते हैं जहां भगवान लीला कर रहे हैं, और वहां उनको उनके नित्य उनके पार्षद के रूप में वो स्थान दे देते हैं। जैसे गोपियां जो थीं वृंदावन में, उनमें से दो प्रकार की, दो श्रेणियां थीं गोपियों की। एक वो हैं जो सीधे भगवान के धाम से उनका उनके साथ में आई थी, और वहां पर उनका वो संग करके वो वापस भगवान के धाम में चली गई। लेकिन गोपी वर्ग में और भी थोड़ी गोपियां थीं जो कि इस भौतिक ब्रह्मांड में ही तपस्या करके भक्ति करके इस स्तर के लिए योग्य हुए कि वो भगवान का निजी संग करें। कोई उदाहरण दे सकते हैं आप? जैसे जब प्रभु रामचंद्र दंडकारण्य में गए, दंडक नाम के जो वन में गए, तो उस समय उन्होंने बहुत सारा संग किया ऋषि मुनियों के साथ में, जो वहां कड़े ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, अपने यज्ञ कर रहे थे। तो ये सारे ऋषि मुनियों ने जब कृष्ण राम को देखा तो उन्होंने सोचा कि कितना सुंदर इनका शरीर है, हम इनके साथ मधुर रस में, श्रृंगार रस में भक्ति का आदान प्रदान करना चाहते हैं। तो उस समय प्रभु रामचंद्र जी ने उनसे कहा कि इस लीला में, इस अवतार में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, इसलिए मैं एक ही पत्नी स्वीकार करूंगा, लेकिन अगली बार जब मैं आऊंगा तो तब मैं कई पत्नियां स्वीकार करूंगा। तो ये जो ऋषि मुनि थे दंडकारण्य के और अन्य जगह के भी, उनको गोपियों का स्थान मिला वृंदावन में, और इस प्रकार से उन्होंने कृष्ण का संग किया। तो इसलिए दो प्रकार के गोपी हुए, एक जो भगवान के धाम से गोलोक वृंदावन से सीधे कृष्ण के संग ही आए, और जो कृष्ण के साथ घूमते रहते हैं जैसे कृष्ण जाते हैं ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में, और दूसरे हुए जो यहां से तपस्या करके सेवा भक्ति करके उन्नत हुए और फिर उनको भगवान के संग करने का मौका मिला। तो वहां पर जो दूसरी गोपियां हैं जो गोलोक वृंदावन से आई थी, उनके संग में उनको ट्रेनिंग मिलता है कि वहां आगे गोलोक वृंदावन में जाकर क्या क्या करना होगा, यहां तैयारी बिल्कुल ट्रेनिंग परफेक्ट मिल जाता है उनको, ताकि थोड़ी बहुत भी कुछ गड़बड़ हो उनके सेवा में तो वो भी ठीक हो जाता है। और फिर ऐसे विरह में डालकर भगवान ने उनके हृदय में जो भी कुछ बाकी कलमश कलमल जो भी बचा हुआ था वो भी खत्म करा दिया। ये चिंता आध्यात्मिक चिंता है, ये जो दर्द उन्होंने महसूस किया ये भी आध्यात्मिक है, ये भी दिव्य आनंद है वास्तव में, क्योंकि भक्ति के स्तर में आनंद में और दुख में, सुख दुख में कोई अंतर नहीं होता। तो इस प्रकार से गोपियों ने जो और ब्रजवासियों ने भी जो दुख का अनुभव किया तथा कथित दुख का, उस कष्ट से, उस दुख से, वो एक ऐसे अग्नि था जिससे सारे उनके जो भी कण मात्र मल बाकी था वो भी धुल गया, और उनके उनका प्रेम जो है कृष्ण के प्रति वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। ये है, इसलिए वहां उस आध्यात्मिक आनंद में भी, उस आध्यात्मिक दुख में भी वो आनंद का अनुभव कर रहे थे। तो इस प्रकार से भगवान कभी कभी अपने भक्तों को, कभी कभी नहीं, हमेशा अपने भक्तों को ऐसे चिंता में, कष्ट में भी डाल देते हैं ताकि उनकी भक्ति आगे बढ़ती रहे। लेकिन भौतिक चिंता अलग बात है, भौतिक चिंता में कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है। तो इस प्रकार से यहां हम देख रहे हैं कि माता सुरुचि सुनीति चिंतित हो गई है, उनको बहुत बुरा लगा कि मेरे बेटे के साथ में, मेरे छोटे बच्चे के साथ में ऐसा बुरा व्यवहार हुआ, और कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इतना अपमान किया उनका, बुरा अपमान किया, और ध्रुव का ही नहीं उनका खुद का भी अपमान किया था। क्योंकि जब सुरुचि कह रही थी कि तुम्हें राजा बनना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, इसका मतलब ये है कि सुनीति अयोग्य है, उनमें वो योग्यता नहीं है कि वो ऐसे संतान की उत्पत्ति करे जो कि राज सिंहासन पर बैठे। तो ध्रुव का भी अपमान हुआ और ध्रुव के पिता का भी अपमान हुआ, तो उनको बहुत बुरा लगा, और इस प्रकार से वो ध्रुव महाराज को उपदेश देने वाली हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि ध्रुव महाराज को उन्होंने क्या उपदेश दिया, हमारे लिए भी सुनने लायक है। हमारा अपमान होता है तो हम क्या उपदेश देंगे दूसरों को, हमारे बच्चों का जाके मारो, सब जाके मारेंगे पीटेंगे, उनका जाके झगड़ा करेंगे उनके साथ में। लेकिन यहाँ कैसे सुनुति देवी ने क्या उपदेश दिया ध्रुव को, वो कल देखेंगे, थोड़ा सस्पेंस में रखेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो अभी आपकी बारी है, अलग अलग भक्त आप बताते रहिए थोड़ा बहुत कि आज आपने प्रवचन में क्या सुना। हाँ, ध्रुव महाराज क्षत्रिय थे, क्षत्रिय खून था उनके अंदर, इसलिए जब अपमान हुआ तो उनको सहन नहीं हुआ, क्योंकि क्षत्रिय के लिए मृत्यु से भी बुरा है अपमान, तो सहन नहीं कर पाए वो। और इसके अलावा बालक भी थे, बालक को थोड़ा कुछ आप बोल देते रोने शुरू कर देता है। और अभी सभी को इसमें भाग लेना चाहिए, भगवान की चिंतन करने से, चिंतन ही नहीं भगवान की सेवा करने से, नाम जप करने से, भक्ति मार्ग में आने से क्या होता है, आनंद होता है, जिसकी वजह से चेहरे पे वो आनंद दिखाई पड़ता है। लेकिन भौतिक चीजों में मग्न होने से दुखी हो जाता है आदमी, और चेहरे पे भी वो प्रकट हो जाता है। और थोड़ा स्पष्ट बोलिए, जो भक्ति में हमारे हृदय में जो मल है वो क्या है, जो भक्ति हमारे हृदय में जो मल है वो पूरी तरह से चले नहीं जाते कभी कभी। हाँ हाँ, थोड़ा ना कुछ कण मात्र किधर भी रह जाता है। तो इसलिए फिर भगवान क्या करते हैं, ऐसे भक्त के साथ में भगवान क्या करते हैं, अपने लीला में पार्षद के रूप में उनको मौका देते हैं। किधर, कहां पर, इस ब्रह्मांड में या दूसरे ब्रह्मांड में, जहां भी भगवान लीला कर रहे हो इस भौतिक संसार में। लगता है कि आज ज्यादा लोगों ने सुना नहीं ठीक से। हाँ, भगवान की लीला भौतिक संसार में चलती रहती है, भौतिक जगत में। एक ब्रह्मांड में समाप्त हुआ तो दूसरे ब्रह्मांड में करते हैं, दूसरे ब्रह्मांड में तो तीसरे, इस प्रकार से एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं, लीला करते रहते हैं। इस प्रकार से भौतिक जगत में भगवान की लीला कहीं न कहीं तो हो रही होती है। इसके बारे में क्या उपमा दी थी हमने, और कोई बताई, सूर्योदय सूर्यास्त क्या उपमा है ये। हाँ, एक जगह जैसे सूरज का उदय होता है तो सूरज अस्त हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान की लीला एक ब्रह्मांड में उनका उदय होता है, फिर वो समाप्त करते हैं, जैसे सूरज का उदय हो गया, सूरज का अस्त हो गया, तो ऐसे होता है। और क्या आगे बढ़ाइए इस उपमा को, उसी प्रकार से कि जैसे पृथ्वी लोक में कहीं न कहीं हर क्षण सूर्योदय हो रहा होता है ना। अगर सारे पृथ्वी को आप देखेंगे तो क्या ऐसा कोई क्षण है जहां पे सूर्योदय कहीं न कहीं नहीं हो रहा हो, है ऐसे कोई जगह। हाँ ठीक, उसी प्रकार से भगवान भी कहीं न कहीं लीला कर रहे हैं, भगवान की लीला का उदय कहीं न कहीं तो हो रहा है हर क्षण, कहीं ना कहीं, कहां अस्त हो रहा है तो कहीं उदय हो रहा है। हाँ माता जी, जब ध्रुव महाराज का अपमान हुआ, पिता ने कुछ कहा नहीं, ये भी और एक विषय है जिसके बारे में आज हमने छुआ भी नहीं कि पिता ने कुछ कहा नहीं उस समय। ये है स्त्री का बंधन, जब पुरुष स्त्री के बंधन में पड़ जाता है तो फिर अपना सारा कुछ खो बैठता है, फिर अपने बच्चे के साथ में भी इतना अपमान हुआ लेकिन कुछ कह नहीं पाए पिता, क्योंकि वो सुरुचि से इतने आसक्त थे। देखिए, तो ये और एक विषय है, लेकिन फिर भी जब ध्रुव महाराज दुखी हुए और चले गए तो माता सुनुति ने ये सुना, उनको भी बहुत दुख महसूस हुआ। और क्या बात? नहीं, क्यों, इसमें सिद्धांत क्या, क्या मूल बात क्या है इसमें? जैसे कि हाँ, जैसे बच्चों को दुख दिया तो माता पिता को ज्यादा दुख होता है, उसी प्रकार से भक्तों को दुख दिया तो भगवान को दुख होता है। और इसके बारे में दृष्टांत कौन से दिए गए थे? एक जो आपने बताया राजा अम्बरीश की कथा, और दूसरी बात चैतन्य महाप्रभु की। और हाँ लीला में, उनका देह मिल गया, तो दंडक के दंडकारण्य के ऋषि उनमें से कई गोपी बनकर आए कृष्ण लीला में, रामलीला के जो ऋषि थे। हाँ जी, मतलब आपका हाथ उठा रहे थे। माता सुरुचि ने ध्रुव महाराज से बताया कि जब तक तुम मेरे गर्भ से जन्म नहीं लोगे तब तक तुम राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। और क्या? कहां से आते हैं? गोलोक वृंदावन से। हाँ, केवल संग किस रस में संग करना चाहते थे भगवान का? माधुर्य रस, श्रृंगार रस में। दास्य रस में करना चाहते तो प्रभु रामचंद्र उस समय भी स्वीकार कर लेते, लेकिन माधुर्य रस में करना था इसलिए नहीं कर पाए। और भगवान अपने भक्त के अधीन हो जाते हैं, जैसे दुर्वास मुनि जब नारायण के पास आए तो नारायण ने क्या कहा? हाथ ऊपर कर लिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी मेरे भक्त के हाथ में ही है। तुमने मेरे भक्त का अपमान किया, अब सुदर्शन ने काम ले लिया मेरे हाथ से, अब सुदर्शन चक्र ही काम संभालेगा। तो इसके लिए उपाय क्या है? केवल अम्बरीश महाराज के शरण में आपको जाना होगा, उनसे क्षमा याचना करनी होगी। और कोई जिन्होंने कुछ कहा नहीं अभी तक? हाँ, जो यहां से भौतिक संसार से उन्नत प्रमोशन जिनको मिला भक्ति में, जिनको भगवान के संग करने का मौका मिला, गोलोक वृंदावन से आए हुए गोपियों के संग में उनको ट्रेनिंग मिला कैसे भगवान की सेवा करनी है, ताकि आगे वहां गोलोक वृंदावन में जाके अच्छी तरह से कर सकें, और ऐसे ट्रेनिंग से भक्ति में और भी आगे प्रगति कर सकें, उनका शुद्धिकरण भी हुआ ऐसे संग से। हाँ हाँ हाँ, जब ध्रुव महाराज दुखी होकर चले गए अपने माँ के साथ, मां के पास में, तो उनका चेहरा और उनकी माता का चेहरा दोनों भी फूल, मुरझे हुए फूल के बराबर हो, उसकी उपमा की गई, तुलना की गई है। क्योंकि जब आदमी दुखी हो जाता है तो चेहरे पे बात प्रकट हो जाती है। और शुद्धिकरण का कारण क्या था उन गोपियों के लिए जो इस संसार से तपस्या करके गोपी बने थे? एक तो उनका संग करना, गोलोक वृंदावन के गोपियों से संग करना। दूसरा क्या कारण था हृदय का शुद्धिकरण होने का? विरह का जो दर्द है, विरह है, उससे वह कैसे था? क्या दृष्टांत दिया उसके बारे में? विरह क्या है? अग्नि के समान है। अग्नि किस चीज को जला डालता है? हृदय में जो भी बाकी कण मात्र जो भी मल है उसको राख कर डालते हैं। तो विरह के अग्नि में वो पूरी तरह से शुद्ध हो गए, क्योंकि अग्नि शुद्ध मानी जाती है ना। अग्नि से कुछ भी आप करेंगे तो वो शुद्ध हो जाता है। और कोई बात? आध्यात्मिक चिंतन करने से खिलते हुए फूल के समान नजर आते हैं, भौतिक चिंतन करने से मुरझाए हुए फूल के परिवार लग जाते हैं। और प्रभुपाद ने कहा चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, हरे कृष्ण जप करो सदा सुखी रहो। और प्रभुपाद जी कहते थे जो भी अतिथि आते थे कि देखो ये मेरे शिष्य जो हैं पहले कैसे उदास हुआ करते थे, लेकिन अभी कितने खुश लग रहे हैं। माया दास सदा उदास, कृष्ण दास बिंदास, है ना? बिल्कुल कोई फिक्र नहीं, कृष्ण के ऊपर निर्भर है। और क्या सुना आपने? हाँ भौतिकवादी लोग जो हमेशा चिंता करते रहते हैं भौतिक चीजों के बारे में, इसलिए दुखी रहते हैं। लेकिन भक्त कृष्ण के ऊपर निर्भर रहता है, इसलिए सब अपनी चिंता कृष्ण के ऊपर छोड़ देता है कि कृष्ण संभालेंगे। इसलिए भक्त भौतिक चीजों के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करता है। किस चीज के बारे में चिंता करता है भक्त? कृष्ण की सेवा कैसे आगे बढ़ाई जाए, दूसरों को कैसे कृष्ण की सेवा में लाया जाए, कृष्ण की सेवा और भी अच्छी तरह से कैसे की जाए, इन चीजों के बारे में भक्त चिंता करते हैं। और कोई बात बोले? इसलिए भक्तों का चेहरा हमेशा खिला रहता है, जैसे आप सबका चेहरा, इतने सारे सुंदर सुंदर फूल लग रहे हैं, सबके चेहरे प्रफुल्लित लग रहे हैं। हाँ जी बोलिए। प्रश्न है, प्रश्न बाद में लेंगे, अभी हम प्रश्न करेंगे, फिर बाद में आप प्रश्न करना, ठीक है? और कोई बात? जैसे जब हम कुछ कमरा बर्तन कुछ स्वच्छ करते हैं तो हो सकता है कुछ कण रह जाते हैं, उसी प्रकार से हम भक्ति भी करते हैं तो कहीं कहीं कोने में, हृदय के कोने में कुछ कण अनर्थों के रह जाते हैं, तो भगवान भी उसको साफ कर डालते हैं आखिर में। और वो आखिरी कण भी जब चले जाता है तब हम गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। तो देखिए गोलोक वृंदावन जाना, उसके लिए क्या अवस्था की प्राप्ति करनी है, किस अवस्था की प्राप्ति करनी है? हमें सोचना चाहिए कि कण की बात तो धुए ढेर सारा कुछ यहाँ पड़ा है हृदय में, वो कैसे साफ करें इसको? झाड़ू मार रहे हैं लेकिन वो कुछ हो नहीं रहा है ना? क्योंकि हमें अच्छी तरह से जाप करना चाहिए, भक्तों का संग करके नम्रता से प्रेम से रहना चाहिए, वैष्णव अपराध कभी नहीं करना चाहिए, वैष्णव सेवा नाम रुचि और जीव दया, ये तीन चीजें हैं हमारे वैष्णव विद्या में। नाम रुचि मतलब भगवान का नाम उत्साह से ध्यान से लेना चाहिए। दूसरी बात, वैष्णवों की सेवा नम्रता से करनी चाहिए, प्रेम से। और तीसरी बात, जीव दया, दूसरों को भी एक कृष्ण की सेवा का अवसर देने का प्रयास करना चाहिए। और क्या बातें सुनी आपने? कुछ प्रश्न किया आपने क्षत्रिय के बारे में? एक क्षत्रिय को आनंद प्राप्त करने के लिए क्या सेवा करनी चाहिए आजकल के जमाने में? आजकल के जमाने में तो सब शूद्र ही है, कलौ शूद्र संभवः। कलयुग में कोई आजकल क्षत्रिय नहीं है, ना ही तो कोई प्रामाणिक ब्राह्मण है आजकल। यहां तक कि थोड़ा बहुत वैश्य देख सकेंगे, कुछ वैश्य के थोड़े लक्षण दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सब शूद्र ही हैं। इसलिए इस कलयुग में अच्छा है कि हम सब वैष्णव ही बने, हम सब कृष्ण के शरण में जाकर वैष्णव बने, तो क्षत्रिय की बात दूर है, हम ब्राह्मण से भी ऊंचे हो जाते हैं, क्योंकि वैष्णव का पद बहुत ऊंचा होता है। लेकिन क्षत्रिय आनंद प्राप्त कर सकता है अपने स्वधर्म के अनुसार कार्य करते हुए। भौतिक दृष्टि से देखा जाए, जैसे पांडव थे, उनका काम था राज करना, जब राज्य उनके साथ में नहीं था तो खुश नहीं रह सकते थे। इसलिए कृष्ण ने जाकर दुर्योधन से कहा कि ये क्षत्रिय हैं, इनका काम है राज करना, राज नहीं करेंगे तो इनकी प्रवृत्ति है, नहीं रह पाएंगे, इसलिए कम से कम इनको 5 गांव तो दे दो, तुम्हारे पास सारा देश है, एक एक गांव दे दो उनको, ताकि एक एक गांव के ऊपर ये राज कर सकें। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा, सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं उनको नहीं दूंगा। तो कहने का मतलब है कि क्षत्रिय की प्रवृत्ति होती है राज करना, उसी में उसको आनंद मिलता है। इसे ब्राह्मण का धर्म का काम होता है पठन पाठन, पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना, पढ़ाना, सिखाना, यज्ञ करना, इसी में उसका आनंद है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति वैसे है। तो जैसे हमारी प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के अनुसार अगर हम कार्य करेंगे तो हम संतुष्ट रहेंगे। एक बनिए के बेटे को आप वैज्ञानिक बनाएंगे तो बेचारा दुखी हो जाएगा, उधर है ना। एक वैज्ञानिक को आप बनिए की दुकान में बिठाएंगे, बेचारा वो दुखी हो जाएगा। तो भौतिक दृष्टि से भी जैसे हमारी प्रवृत्ति है, वैसे हमें उस कार्य में, उस सेवा में लगना चाहिए। लेकिन चाहे हम किसी भी प्रकार का कार्य क्यों न कर रहे हो, इन सारे कार्यों को हमें भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पण करना चाहिए, और सभी को भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप और कीर्तन करना चाहिए, और कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, फिर वास्तव में हम सुख की प्राप्ति कर पाएंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न? कर्ण मात्र हमारे अंदर मल रह जाता है तो कौन से कर्म मल रह जाते हैं? भौतिक आसक्ति, ईर्ष्या की भावना, ये सबसे आखिर में जाएगी। वैसे एक डिटेल में सब्जेक्ट है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मधुर्य कादंबरी नाम के ग्रंथ में इसको बहुत विस्तार में बताया है, किस प्रकार के अनर्थ कब जाते हैं हृदय से। भक्ति में जब हम प्रगति करते रहते हैं ना, भक्ति के भी अलग अलग स्तर होते हैं, तो अच्छी तरह से उन्होंने एक विश्लेषण किया है कि भक्ति के इस स्तर में ये प्रकार के अनर्थ चले जाते हैं, इस स्तर में वो प्रकार के अनर्थ जो भी बाकी है वो चले जाते हैं, ये प्रकार इस स्तर में और जो बाकी अनर्थ है वो चले जाते हैं, और आखिर में केवल ये रह जाता है, और फिर वो भी प्रेम भक्ति के स्तर में चले जाता है। तो ऐसे सुंदर विश्लेषण किया है, अलग अलग प्रकार के अनर्थ होते हैं, कभी और इसके बारे में चर्चा करें। ठीक है, भगवत क्लास सुनते हैं, मंदिर में आते हैं, और ये सारे चीजें सुनकर इच्छा तो होती है कि इन चीजों को हम करें, ग्रंथों को पढ़ें और सेवा करें, लेकिन घर जाकर फिर वो दृढ़ता नहीं रहती है, क्योंकि अभ्यास इतना हुआ नहीं है अभी तक, इसलिए वो आदत नहीं बनी इतनी। जिस चीज में अभ्यास कर करके आदत बन जाती है, फिर वो स्वाभाविक बन जाता है, जैसे शराबी होता है, शराब पी पी कर उसकी आदत पड़ जाती है, आदत पड़ने के बाद उसको स्वाभाविक हो जाता है कि जहां भी जाए वो शराब के लिए जाता है, चाहे इच्छा चाहे तीव्र इच्छा हो ना हो, एक आदत सी बन जाती है, इसलिए जाके बैठ जाता है शराब पीने के लिए। तो उसी प्रकार से जब हम अभ्यास करेंगे, बार 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 ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, जप करेंगे, संग करेंगे, तो आदत बन जाती है। आदत बन जाती है तो भक्ति करना स्वाभाविक बन जाता है। इसलिए अभी हम जो कर रहे हैं उसको वैधि भक्ति कहते हैं, साधना भक्ति, विधि विधानों का पालन करते हैं, इसको वैधि भक्ति कहते हैं। तो इसका पालन करते करते जब आदत बन जाएगी तो वह स्वाभाविक बन जाएगा, उस समय इसको रागानुग भक्ति कहते हैं। तो उस स्तर की प्राप्ति करनी है हमें, अभ्यास अच्छी तरह से करना है, बार बार करना है, धीरे 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 से वो आदत बन जाएगी, फिर स्वाभाविक हो जाएगा। ठीक है, अभी हम अभ्यास के स्तर में हैं, इसलिए अभ्यास करते रहना है। अभी तक पूरी तरह से भक्ति हमारे हृदय में स्वाभाविक तौर से आई नहीं है, थोड़ा बहुत जोर देना पड़ता है, जाप करना है 16 माला, और फिर भक्तों के संग में जाना है, सुबह सुबह उठना है, मंगल आरती में जाना है, हमें क्लास में बैठना है, पढ़ना है किताब, थोड़ा कुछ जोर अंदर से होता है, वो जोर भी आवश्यक है अभ्यास के स्तर में। लेकिन ऐसे अभ्यास करते करते फिर अभ्यास की आवश्यकता नहीं होगी, फिर स्वाभाविक तौर से सब हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से? नहीं, वो जीवदया नहीं है, नहीं, मरीजों को दवाई देना केवल वो जीवदया, जीव मतलब आत्मा। वास्तविक दया क्या है? वास्तविक दया है उनको कृष्ण के शरण में लाना, जिनसे सारे बीमारियां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी, वो वास्तविक जीव दया है ना। और उस दया से संबंधित अगर कोई दया है तो वो ठीक है, लेकिन मूल जीव दया क्या है? लोगों को कृष्ण भक्त बनाना, जिससे कि जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाकर वो भगवान के धाम में चले जाएंगे और शुद्ध कृष्ण प्रेम का के रस का आस्वादन करते रहेंगे, ये वास्तव में जीव दया है। तो इसके लिए हमें नाम रुचि पहले होनी चाहिए, हमें वैष्णव सेवा करना चाहिए, फिर जाकर हम दूसरों को ऊपर जीव दया कर सकते हैं। पहले अपने आप के ऊपर जीव दया करनी चाहिए, अपने आप को कृष्ण भक्ति में अच्छी तरह से स्थित करना चाहिए, है ना। खुद हम नाम जाप नहीं करेंगे, खुद किताब पढ़ेंगे नहीं, क्लास में बैठेंगे नहीं, कीर्तन में आएंगे नहीं, नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो दूसरों से कैसे कहेंगे कि आप जाप करो। तो पहले अपने आप के ऊपर दया, जीव के ऊपर, आत्मा के ऊपर दया, फिर खुद ब खुद दूसरों के ऊपर दया हो जाए। प्रिय का अपमान करने से उसको क्रोध आता है, हमारा अपमान करने से भी हमें क्रोध आता है, तो हम क्षत्रिय नहीं है, ये कैसे हुए? नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल क्षत्रियों को क्रोध आता है, क्रोध सभी को आता है, सारे भौतिकवादी व्यक्तियों को, सभी को क्रोध आता है अपमान जब किया जाता है, लेकिन खास करके क्षत्रिय खून ऐसा है कि उनको सहन नहीं होता। ऐसे कई लोग होते हैं अपमान हुआ भी तो चुपचाप सहन कर लेते हैं, भौतिक दृष्टि से भी देखिए ऐसे कितने लोग हैं, उनका स्वभाव वैसे है, लेकिन क्षत्रिय स्वभाव अलग है, अपमान सहन नहीं होता। लेकिन वैष्णव को कैसे बनना चाहिए? वैष्णव को अपमान सहन करना चाहिए, अपने प्रति कोई अपमान हो तो उसे सहन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि इससे ज्यादा अपमान मुझे मिलना चाहिए था। लेकिन वैष्णव के दूसरे वैष्णवों के प्रति या कृष्ण के प्रति अपमान हो तो वो सहन नहीं होता भक्तों को। तो भौतिक दृष्टि से सभी को, सभी लोग दुखी हो जाते हैं अपमान से, कौन सुखी होता है अपमान सुनने से? लेकिन वैष्णव नम्र रहते हैं, अपना खुद का अपमान हो तो उसको सहन कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्न है कि जीव दया तो ठीक है कि भक्ति में लाना जीवों को, लेकिन शारीरिक मदद दूसरों को देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, ये जीव दया है कि नहीं है? इसमें आप कौन जवाब देंगे? इसके बारे में एक बार हमने प्रवचन दिया था, एक बार चर्चा हुई थी इस बारे में। हाँ बोलिए। में अच्छी तरह से समझाया, क्या है कि अगर जिस व्यक्ति की शारीरिक सहायता आप कर रहे हैं, उस शारीरिक सहायता करने से उसे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए थोड़ी प्रेरणा मिलेगी, या आपको या उनको या किसी को भी आध्यात्मिक जीवन में कोई लाभ हुआ या होने की संभावना है, तो फिर ऐसे कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि कोई संभावना नहीं है इसमें, ना तो उनको फायदा है, ना आपको है, ना और किसी को आध्यात्मिक लाभ है इसमें, तो केवल शारीरिक स्तर पे सेवा करना ये जीवदया नहीं कहलाता, है ना। जैसे अगर किसी का कमीज फटा हुआ है और ठंड है, तो उसकी कमीज को ठीक करना ठीक है, उसके शरीर को भी सहायता करेगा, लेकिन केवल कुछ ऐसा छोटा मोटा कर ले जिससे शरीर को फायदा नहीं होगा, उनका शरीर ढकेगा नहीं, तो ऐसा करने से कोई लाभ नहीं है। तो ये शरीर ये पोशाक के बराबर है। तो जब भी हम ये शरीर की सेवा करते हैं तो इसलिए करते हैं कि आत्मा और शरीर इकट्ठे रहें, ताकि आत्मा की उन्नति हो, आत्मा का शुद्धिकरण हो। तो इसलिए हमें शारीरिक सेवा इस दृष्टि से करनी चाहिए कि जिनकी हम सेवा कर रहे हैं उनको भगवान की ओर लेकर आए, ये मूल बात होनी चाहिए। यूं ही शरीर की सहायता करने के लिए तो कोई कमी नहीं है, संसार में इतने सारे लोग पड़े हैं, उनकी शारीरिक सेवा करते रहे करते रहे, कोई सीमा ही नहीं है इसकी, लेकिन केवल ये करने से लाभ नहीं होगा। इसलिए हमें इस शारीरिक सेवा को कृष्ण सेवा से जोड़ना चाहिए। अगर इसको जोड़ सकते हैं तो फिर हम कर सकते हैं, अगर जोड़ नहीं सकते तो फिर इसमें कोई लाभ नहीं है। या अगर वैष्णव हो, वैष्णवों की शारीरिक सेवा करना ये दूसरी बात है, वैष्णवों की शारीरिक सेवा करने से हमें भी लाभ मिलेगा। जैसे ईश्वर पुरी ने माधवेंद्र पुरी की सेवा की, शारीरिक सेवा की, लेकिन उस शारीरिक सेवा से उनको बहुत लाभ प्राप्त हुआ आध्यात्मिक, क्योंकि कृष्ण प्रसन्न होते हैं वैष्णवों की सेवा करने से। लेकिन ये शारीरिक सेवा के क्षेत्र में श्रेणी में नहीं आता, ये वैष्णव सेवा के श्रेणी में आता है। आपको पुण्य मिलेगा, पुण्य मिल जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति इस कार्य से नहीं होगी। भले पुण्य मिल जाए, ऐसा होगा कि अगले कभी भविष्य में आपको कभी भोजन की कभी जरूरत हो तो आपको कोई ना कोई आके दे देगा, क्योंकि आपने ऐसे सहायता की है, तो ये पुण्य है। तो ये एक सामाजिक और भौतिक क्षेत्र की बात है, भक्ति की बात नहीं है ये। लेकिन अगर इस चीज को आप भक्ति से जोड़ सकते हैं तो सबसे उत्तम होगा। इस मौका का फायदा उठाकर उनको किसी न किसी प्रकार से कृष्ण भक्ति में लाने का प्रयास करें तो वो अलग बात है। भोजन देते हैं तो उनको कृष्ण प्रसाद दिलाइए, उनको थोड़ा उपदेश देते हैं तो कृष्ण भक्ति में थोड़ा प्रेरित कीजिए। इस प्रकार से जो भी हम मदद दूसरों को करते हैं कृष्ण भक्ति से जोड़कर अगर करें तो उससे अधिक लाभ होगा, नहीं तो ये केवल पुण्य के स्तर में रहेगा। लाभ मिलेगा लेकिन वो लाभ भी भौतिक स्तर में होगा। बात नहीं है इसमें, लेकिन ये भक्ति के क्षेत्र में नहीं है। लेकिन ये स्वाभाविक है कि भक्त जो है किसी का दुख देखना नहीं चाहता है, इसलिए बेहतर ये है कि उसको कृष्ण भक्ति के साथ में जोड़ दिया जाए, क्योंकि हमारी सीमा है कहां तक, कितने कितने लोगों को हम शारीरिक मदद करते जाएंगे, सारे संसार में दुखी लोग पड़े हैं, तो इसलिए हमें कृष्ण भक्ति से जोड़ना चाहिए। ठीक है, कृष्ण भक्त अपने वैराग्य की वजह से बिंदास हो जाता है, बिंदास मतलब जो निडर हो जाता है, तो भौतिकवादी लोग उनको मूर्ख बोलते हैं। हाँ बोलने दीजिए, खुद मूर्ख है दूसरों को मूर्ख समझते हैं, है ना। जो मूर्ख होता है ना वो कभी अपने आप को मूर्ख नहीं समझता, दूसरों को मूर्ख समझता है। भौतिकवादी लोग ऐसे हैं, भक्तों को मूर्ख समझते हैं, लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो भक्त होता है वो सबसे बुद्धिमान होता है। बुध भाव समन्विता, बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति, हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुध भाव समन्विता। जो व्यक्ति जान लेता है कि मुझसे सब कुछ आता है, मैं ही सब भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि का उगम स्थान हूं, तो ऐसा व्यक्ति इति मत्वा भजन्ते माम, मेरा भजन करता है।